प्यारे साथियों नमस्कार। आज 7 सितंबर 2015 के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों साथ में ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 10 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं प्राची शर्मा जयपुर से, रमाकांत दिल्ली से, राकेश कुमार बक्सर बिहार से, सुरेंद्र सिंह श्री गंगानगर राजस्थान से, सागर मलिक शामली उत्तर प्रदेश से, मलखान सिंह बदायन उत्तर प्रदेश से, सुमन कुमार जामुई बिहार से, विजय भास्कर समस्तीपुर बिहार से, रवि कुमार मीना अलवर राजस्थान से और अभिषेक रोर सोनीपत हरियाणा से। तो प्राची, रमाकांत, राकेश, सुरेंद्र, सागर, मलखान, सुमन, विजय भास्कर, रवि कुमार और अभिषेक, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि 5 सितंबर को टीचर्स डे पर आप लोगों ने ढेर सारी मेरे पास शुभकामनाएं भेजी हैं, एसएमएस से भी शुभकामनाएं मिली हैं और ईमेल से भी बहुत सारी शुभकामनाएं मिली हैं। मित्रों, इसके लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर मुझे वह शक्ति दे, वह क्षमता दे, वह विजडम दे ताकि जो भावना आप लोगों की मेरे प्रति है, जो विश्वास आप लोगों का मेरे प्रति है और उससे भी बड़ी बात जो उम्मीदें आप लोगों की मुझ पर हैं, मैं उन्हें पूरा कर सकूं। और निश्चित रूप से दोस्तों, आप लोगों की इस तरह की शुभकामनाएं उस पूरा करने की यात्रा में निश्चित रूप से एक भावनात्मक शक्ति का काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मित्रों, इससे पहले कि आज मैं लाइफ मैनेजमेंट पर बात करूं और आज मैं इसी इशू को लेकर के थोड़ी सी बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। इससे पहले जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स की मैंने जो आप लोगों से बात की थी, उस पर मुझे कुछ मेल्स मिले हैं जिसमें ये शो बताया गया है कि जो मैट है वो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स है। शायद बोलते समय मैं उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोल गया हूंगा, तो आप लोग बिल्कुल उसे करेक्ट कर लें, वो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स ही है। बोलने की जल्दबाजी में वो ऐसा मेरे मुंह से निकल गया होगा, लेकिन इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि कुछ स्टूडेंट्स ने उधर ध्यान दिलाया है, तो उसे आप डायरेक्ट टैक्स कर लें। और अब मैंने ये निश्चित किया है कि खासकर ऐसे इश्यूज पर अब मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड जरा सा स्लो करूंगा ताकि बोलते समय इस तरह की जो कंफ्यूजन कह लीजिए, गलतियां तो क्या है, क्योंकि जानबूझ करके नहीं की जाती हैं, उससे और भी बचा जा सके। मित्रों, सबसे पहले अब मैं आता हूं अपने लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से पर। दोस्तों, हमारे यहां आजकल दो शब्द चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने एक गुरु पूर्णिमा पर भी मेरे पास ढेर सारी शुभकामनाएं मुझे दी थी और अभी टीचर्स डे पर दी हैं। भारत में गुरु पूर्णिमा की ही परंपरा रही है, गुरु के दिवस को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। एक तो गुरु नानक देव के रूप में उनके जन्म उस गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और फिर बौद्ध खासकर गौतम बुद्ध के को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन को भी हम एक तरह से गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और आप देखिए कि इसमें जो प्रतीक दिया हुआ है वो दोनों के पूर्णिमा है, पूर्णिमा यानी कि प्रकाश और वो चंद्रमा। दोस्तों, शिक्षक और गुरु में जो थोड़ा सा फर्क है, मैं इधर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा ताकि आप इन चीजों को थोड़ा सा विशेष रूप से देख सकें, वो ये है, बहुत छोटा सा फर्क है, वो ये है कि शिक्षक वो होता है जो आपका कैरियर बनाता है और गुरु वो होता है जो आपके जीवन को बनाता है। मैं ये नहीं कहता कि जो कैरियर है वो जीवन से बिल्कुल अलग है, लेकिन मित्रों दोनों बिल्कुल एक भी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, मैं बहुत से लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिनका कैरियर तो बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है, इतना अच्छा है कि कोई भी उन्हें देख करके ईर्ष्या कर सकता है, लेकिन जीवन उनका बेहतर नहीं है, बल्कि जीवन से वो परेशान है या कह लीजिए कि बहुत ही दुखद है। इसीलिए कैरियर डेफिनेटली जीवन का एक हिस्सा होता है और हम में से हर एक को अपना अपना कैरियर चुनना होता है और कैरियर के लिए हम काम भी करते हैं। लेकिन मित्रों, आप लोग इस गलत फहमी में कतई मत रहिएगा कि कैरियर ही जीवन है, या अगर कैरियर नहीं है तो जीवन नहीं है। जीवन बहुत विराट है, बहुत विशाल है। कैरियर तो उस बहुत से विशाल कैनवास में लगाया हुआ एक छोटा सा बिंदु भर है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। ये दोनों में फर्क है। दोस्तों, आप लोगों ने मन की बात के अंतर्गत, मन की बात नहीं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी स्टूडेंट से बात कर रहे थे टीचर्स डे की पूर्व संध्या पर, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था कि मां जन्म देती है और जो टीचर है वो जीवन देता है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी। तो जो जीवन देता है उसका संबंध बेसिकली वो गुरु से ही है, और ये भारत की मतलब कह लीजिए महानता है, विशालता है, उदारता है कि वो टीचर्स डे को भी उसी सम्मान और उत्साह के साथ मनाता है जितने सम्मान और उत्साह के साथ वो दो दो गुरु पूर्णिमाओं को भी मनाता है। और इसके बाद आप लोगों को मालूम है कि बहुत से ऐसे धार्मिक परंपराएं हैं हमारे यहां जो अपने अपने गुरुओं के गुरु पर्व अलग से मनाते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने टीचर्स डे पर बहुत शुभकामनाएं भेजी हैं, तो बहुत लोगों ने बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। कुछ लोगों ने बड़े ओरिजिनल फॉर्म में अपनी भावनाएं लिखी हैं और कुछ लोगों ने एक सामान्य तरीके से दी है। मैं उनका वर्गीकरण नहीं कर रहा हूं, कतई नहीं कर रहा हूं। भावनाएं सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो जिन शब्दों में भी व्यक्त हो। मैं यहां आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रहा हूं, और वो ये कि जीवन कैसे बनता है या कैरियर कैसे बनता है, इसके बारे में आपको बस थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। और अलर्ट इस मायने में कि जब भी आप कोई भी काम करें, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों न हो, उसको थोड़ा सा वक्त दें। काम को शुरू करने से लेके खत्म करने तक उससे पहले थोड़ा सा उस पर विचार करें। दो बातें दोस्तों, पहला कि किसी भी काम को करने से पहले उस पर थोड़ा सा सोचें, तुरंत शुरू मत कर दें, और इसके बाद उसको बहुत जल्दी खत्म करने की अधीरता भी मत दिखाएं। शुरू करने से पहले सोचें और फिर पूरे धैर्य के साथ उसे पूरा करें, और पूरा करने के बाद फिर उसे एक बार दोहराएं। मित्रों, आप देखेंगे कि आपके ही ये जो काम करने की गुणवत्ता है ये कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और न केवल क्वालिटी ही बढ़ेगी बल्कि उसमें ओरिजिनलिटी भी आ जाएगी। हमसे होता क्या है कि हम अपने जीवन के बहुत से कामों को एक ट्रेंड की तरह लेने लगते हैं कि ठीक है, रोज हम कर रहे हैं तो एक हमारी उसको करने की एक हैबिट बन गई है, और हम उसी हैबिट को पकड़ करके अपने उस काम को अंजाम देते रहते हैं। मित्रों, एक प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जैसे मान लीजिए कि टीचर्स डे पर आप मुझे विश कर रहे हैं, या किसी के जन्मदिन पर किसी को विश कर रहे हैं, किसी को प्रणाम कर रहे हैं, किसी से कुछ भी बात करने जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप बाजार ही जा रहे हैं सब्जी खरीदने या कुछ और खरीदने, तो जाने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए। आप विश कर रहे हैं किसी को, टीचर्स डे पर भेज रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ा सा वक्त इसमें लगाइए कि यार मैं दो चीजें मुझे करनी है। पहली तो बात यह है कि मैं अपने इमोशंस लाऊं। जैसे हैप्पी टीचर्स डे जब हम कहते हैं तो उसमें हमारे इमोशंस नहीं होते। शिक्षक दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे अपने थॉट्स नहीं है, वो तो एक सुनी हुई बात है जो हम लिख देते हैं, और ये कतई कम नहीं है। मतलब ये मत समझिएगा कि मैं इसे कहीं सेकेंड ग्रेड की शुभकामनाएं मान रहा हूं। शुभकामनाएं जैसी चीज, बधाई जैसी चीज, आशीर्वाद जैसी चीज कोई फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड नहीं होती है। उसमें भावनाओं का की जो चाशनी मिली होती है उसी में इतनी बड़ी ताकत होती है कि ग्रेडेशन होता ही नहीं है। मैं केवल आपके अपने अपग्रेड करने की बात कह रहा हूं कि आप कैसे अपने को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे, आगे होते चले जाएंगे। तो मित्रों, करने से पहले थोड़ा सा सोचिए। नो डाउट कि शुरू में आपके दिमाग को तकलीफ उठानी पड़ेगी और उतनी जल्दी आपका साथ नहीं देगा कि आपको तुरंत कोई नया शब्द मिल जाएगा, कोई नया वाक्य बन जाएगा, नए विचार आ जाएंगे, उसमें थोड़ी सी देरी लगेगी। लेकिन कीजिए, मजा आएगा आपको। आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आप नया ढूंढ लेंगे, और ये अपने दिमाग को एक्टिवेट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम होगा, बहुत अच्छा तरीका होगा। देखिए दोस्तों, जो सिविल सर्विस में जो लड़के दूसरों की तुलना में आगे निकल जाते हैं, आंसर वो भी वही लिख करके आते हैं, कमोवेश क्वेश्चंस तो एक ही होते हैं, उसमें आपको जनरल स्टडीज में तो चॉइस ही नहीं है, सभी उसी आंसर उसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जो अच्छा उत्तर लिख रहा है वो उत्तर अच्छा बन कैसे रहा है, कौन उसकी मदद कर रहा है, उसका भाग्य, उसका ईश्वर, उसका गुरु, कौन मदद कर रहा है? नो डाउट उसका मस्तिष्क। अब यह बात अलग है कि उसके मस्तिष्क को किसने बनाया है, उसने खुद बनाया है, गुरु ने बनाया है, शिक्षक ने बनाया है, माता पिता ने बनाया है, परिस्थितियों ने बनाया है, उसकी अपनी मेहनत ने बनाया है, दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग, वो एक अलग बात है। लेकिन उसकी जो मदद कर रहा है, याद रखिए वो उसका मस्तिष्क कर रहा है, क्योंकि उसका मस्तिष्क इतना ट्रेंड हो गया है। और ट्रेंड कैसे हुआ है? इसी तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूं। उसका दिमाग इतना ट्रेंड हो गया है कि जब उसको जरूरत पड़ती है, जब वो उत्तर लिखने बैठता है, तो उसका दिमाग एकदम आज्ञाकारी सेवक की तरह, एकदम आज्ञाकारी सेवक की तरह, जैसे राजस्थान में एक बड़ी खूबसूरत परंपरा है आज्ञाकारी सेवक की, जी हुकुम जी हुकुम, मतलब कमर झुका करके और इतनी विनम्रता के साथ वो जी हुकुम कहते हैं। आप लोगों ने कुछ फिल्मों में देखा भी होगा कि सच में सुनकर मन गदगद हो जाता है, मतलब भावना का उसमें ऐसा लगता है जैसे कि जबरदस्त प्रवाह है। तो उस जी हुकुम की मुद्रा में आकर के आपका मस्तिष्क आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा, विचार प्रोवाइड करेगा, वाक्य देगा, शब्द देगा, और आप बस उन्हें गूंथते चले जाएंगे और आपका उत्तर दूसरों से भिन्न होता चला जाएगा। लेकिन ये होगा कब मित्रों? ये होगा तब जब आप अपने दिमाग को ट्रेंड करेंगे। तो दोस्तों, मैं जो यहां आज के लाइफ मैनेजमेंट में आपसे जो बात कहने जा रहा हूं, जो एक तरीके से कह लीजिए कि टीचर्स डे के एक दिन के और बाद, दो दिन के बाद, आज मैं जो आपको संदेश देना चाह रहा हूं वो सिर्फ यही कि कुछ छोटा सा भी काम हो, उसको छोटा बड़ा मत मानिए, छोटा सा भी काम हो, प्लीज उसके पहले थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा, शुरू में थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, लेकिन बाद में फटाफट चीजें होने लगेंगी। फिर आपको पहली बार पता लगेगा कि सच में आप में कितनी कैपेबिलिटी है। जिस कैपेबिलिटी को लेकर के आप पहले संदेह से घिरे हुए थे, आप डाउट करते थे अपनी कैपेबिलिटी को लेकर के, अब वही आपको धीरे 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 दिखाई देने लगेगी। पहले वो थोड़े से धुंधले रूप में आएगी, फिर धीरे धीरे आकार लेगी, और फिर आकार लेने के बाद वो चमकीली होती चली जाएगी। वहां से वो जो कैपेसिटी है आपकी इमर्ज होगी, और तब आप बड़े अच्छे तरीके से और बड़े स्पष्ट तरीके से पूरे आत्मविश्वास के साथ उन कई कैपेबिलिटी में से एक कैपेबिलिटी को अपने लिए चुन लेंगे और उस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। आगे फिर मैं आपसे, अब ये तो हमारे डेली ऑडियो गाइडेंस का एक हिस्सा ही है, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे, खूब बातें करेंगे। आप लोग बताइए कि आप लोग किन चीजों पर जानना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं वहां से भी विषय उठाऊंगा। और चूंकि आप लोगों के लिए ही ये है, तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी कि आप लोग जो चाह रहे हैं मैं उसी पर बात कर रहा हूं। मित्रों, अब मैं आता हूं अपने, खासकर जो हमारे ऑडियो गाइडेंस का जो हार्ड कोर हिस्सा है, हार्ड कोर हिस्सा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब ये जो हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा आप लोगों को नीरस सा लगता होगा, लेकिन जरूरी है। और याद रखिए कि जो नीरस होता है, वो नीरसता जो होती है या सरसता होती है, वो हमारे दिमाग में होती है, विषय में नहीं होता है। मैं क्लासिकल म्यूजिक नहीं समझ पाता, और सही पूछे तो एंजॉय भी नहीं कर पाता, लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूं कि वो क्लासिकल म्यूजिक के नाम पर पागल हो जाते हैं, और क्लासिकल म्यूजिक के जब प्रोग्राम होते हैं भोपाल भारत भवन में तो जाते ही जाते हैं। तो अब वो निरस्ता क्लासिकल म्यूजिक में थोड़ी है मेरे लिए, तो मेरे दिमाग में है, मेरी समझ में नहीं आती है, तो मेरे लिए नीरस हो गया। जिनकी समझ में आती है वो रात रात भर बैठे रहते हैं। तो मित्रों, ये तो हमारे दिमाग की बात है, और आपको अभी फिलहाल तो चाहे ये जितना भी नीरस लगता हो, लेकिन यदि आप सिविल सर्विस में अपीयर होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि ये अपने को दुरुस्त नहीं करने वाले, न्यूज और अखबार और ये तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप अपने दिमाग को दुरुस्त कीजिए, फिर आपको इसमें मजा आने लगेगा, और मजा आना ही चाहिए, और मजे वाली बात भी है दोस्तों। तो अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। आज काफी खबरें थी और इंटरेस्टिंग खबरें थी। आज मैं इस न्यूज का विश्लेषण आपसे थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहा हूं। जिसे मैंने अभी शुरुआत में आज के लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में भी कहा कि थोड़ा सा सोचिए। तो आज हम न्यूज के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें सोचते हैं, राइट? और मैं ये सिविल सर्विस के लिहाज से बात कर रहा हूं, तो राइट। एक खबर आपने पढ़ी, खासकर G20 को लेकर, है ना? G20 में हमारे अभी फाइनेंस मिनिस्टर गए हुए हैं और वहां उन्होंने, वहां के जो ग्रुप ऑफ गवर्नर्स थे उनको उन्होंने एड्रेस किया और उसमें भारत की जो आर्थिक मजबूती है उसके बारे में बताया, उनको इंश्योर किया और उनको आह्वान, मतलब इनवाइट किया कि आप भारत में आइए और इन्वेस्ट कीजिए। उनके साथ हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे। ये बात आपने न्यूज में थोड़ी सी सुनी, कल के न्यूज में वो बात ज्यादा थी और साथ ही आपने आज कल के न्यूज में जो सुनी थी वो ये थी कि उस G20 में एक W20 ग्रुप बनाया गया है। W स्टैंड फॉर वीमेन, 20 ग्रुप बनाया गया, महिलाओं का एक समूह बनाया गया है जो जिसका मूल उद्देश्य है लैंगिक समानता। ये न्यूज आपने सुनी दोस्तों, आपने ये न्यूज सुनी और सतर्कता के साथ सुनी और आपके दिमाग में ये रजिस्टर्ड भी हो गया कि W20 जैसी कोई चीज है। देखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप अभी अपने 2015 के प्रीलिम्स का पेपर उठा करके देखें तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस। रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस क्या है और आगे मेंशन किया हुआ है कि ऑफन मेंशन इन द न्यूज, जो अक्सर न्यूज में आता रहता है, आता रहा है, रियो 20 कॉन्फ्रेंस क्या है। और इसके बाद उन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं। अगर आपने जरा से भी सतर्कता की है तो आप इसका उत्तर बड़े आसानी से दे देंगे और आपको लगेगा यार जो दूसरे अल्टरनेटिव दिए हुए हैं वो क्या फालतू के अल्टरनेटिव दे रहे हैं, बल्कि आपको ये भी थोड़ा सा प्राउड हो सकता है, आपको बेवकूफ समझ रखा है क्या कि इतने फालतू की चीजें दे रहे हैं। सिंपल सी चीज है कि इसका ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट है। दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? देखिए, सिविल सर्विस प्री में जो हमारी गड़बड़ी होती है ना वो यही है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लगता है यार ये तो बड़ा अच्छा है, उत्तर लिख लेंगे, लेकिन जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस के साथ यही होता है। अब सवाल यह है कि जो ये गड़बड़ी होती है या जो भ्रम की स्थिति बनती है इसको खत्म कैसे किया जाए? इसको आप एक लाइन में खत्म नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि एक लाइन आपने पढ़ लिया आप इसको खत्म कर देंगे तो वो मुझे लगता है दोस्तों संभव नहीं है। तुरंत तो ऐसा लगता है कि हम इसे कर लेंगे, जैसे अभी मैंने G20 की बात की, आपको कुछ फैक्ट्स मालूम है कि G20 अंकारा में हुआ जो टर्की में है, हमारे वहां फाइनेंस मिनिस्टर गए, हमारे गवर्नर साहब गए, वहां W20 की एक स्थापना की गई, W स्टैंड फॉर वीमेन और वो एक महिलाओं का ग्रुप बनाया गया जिसका मूल उद्देश्य है लैंगिक समानता के लिए काम करना। यहां तक आप याद कर लिया आपने को, ठीक है, हो सकता है कि आपका इससे काम भी चल जाए। अगर सीधे सीधे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसका उत्तर दे करके भी आ जाएंगे। लेकिन मित्रों, आप सिर्फ प्री के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा यह है कि अब अगर आपको इस फैक्ट को अपने दिमाग में ज्यादा समय तक रखना है, जो मैंने कह रहा हूं कि जो भ्रम की स्थिति से अपने आप को बचाना है, तो आपको करना क्या चाहिए? आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। और किस तरह की मेहनत करनी चाहिए? आपकी मेहनत यह होनी चाहिए फ्रेंड्स कि आप अभी एक जो अवसर है उसमें G20 को थोड़ा सा पढ़ लें, देख लें कि ये जो G20 है ये है क्या, ये जी का मतलब क्या हुआ। सिंपल सा मतलब है ग्रुप, 20 का मतलब है 20 देशों का समूह। और फिर जब आप G20 के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कुछ और चीजें ध्यान में आ जाएंगी, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में रह जाएंगी। जैसे कुछ चीजें आपके आएंगी कि ये जो है ना बेसिकली ग्रुप 20 है, जी स्टैंड फॉर ग्रुप, ग्रुप 20 है, इसका जो संगठन, इसका इसके जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी, यानी कि बस 2000 से एक साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी आलोचना भी लोग बहुत करते हैं ना, जो G20 है इसकी आलोचना की जाती है, इसकी तानाशाही की या डिक्टेटरशिप की या अपने टर्म ये वो करती है, उसका कारण है। उसका कारण क्या है कि जो G20 है, अब आप देखिए देश तो केवल 20 है, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जो यूरोपियन यूनियन है ना, जिसमें शायद 28 सदस्य हैं जो यूरोप के देश हैं जिन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है, उसको एक कंट्री के रूप में माना गया है। हालांकि उसके 28 देश इसके मेंबर है लेकिन उसको एक माना गया है 19 और दूसरे देश हैं। 19 कौन से देश हैं, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जिसमें डेफिनेटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर गए थे, तो भारत तो है ही है, ये तो बहुत ही मतलब एक अपने आप समझ में आने वाली बात है। टर्की में चूंकि सम्मेलन हो रहा है तो बट ने चोरे कि टर्की भी इसका मेंबर होगा ही होगा, क्योंकि बिना अगर वो मेंबर नहीं होगा तो उसके देश में सम्मेलन नहीं हो सकता। चाइना है जो आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इसी के साथ ही सोचिए कि अमेरिका भी है जो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके साथ ही साथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, आपको इस तरह के मतलब कुछ और देश आपको मिलेंगे, कैनेडा है, कैनेडा जो बहुत ही जिसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इसमें देश तो इस तरह से ग्रुप तो 20 हुए, ये मतलब 20 लोगों का ये ग्रुप हुआ, लेकिन ये जो पूरी की पूरी विश्व की जो जीडीपी है उस जीडीपी का 85% सोच करके देखिए 85% केवल यहां से होता है इन देशों से, और जो वर्ल्ड ट्रेड है जो पूरे के पूरे विश्व का जो व्यापार है उसका 80% ये लोग कंट्रोल करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पॉपुलेशन भी कम नहीं है, अगर इनके देशों को मिला दिया जाए तो ये 2/3 पॉपुलेशन मतलब विश्व का लगभग 65% पॉपुलेशन यहां रहती है। आप देख ही रहे हैं कि दो देश तो बहुत बड़े बड़े पॉपुलेशन वाले चाइना और भारत इसमें शामिल ही है। अमेरिका का भी पॉपुलेशन कम नहीं है, लगभग 30 करोड़ के लगभग उसकी आबादी है, और फिर यूरोप के 28 देशों को मिला दें तो आबादी काफी हो जाती है। तो 65% पॉपुलेशन आप कह लीजिए कि 85% जीडीपी को कंट्रोल कर रही है, ये आप मान करके चलिए मोटे तौर पर। तो जब आप इस तरीके से उसे थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ लेते हैं तो होता क्या है कि फिर उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है आपके दिमाग में ज्यादा समय तक के लिए रह जाती है। तो दोस्तों जो इस तरह के इंपॉर्टेंट खबरें जो इस तरह की होती हैं, मेरे सजेशन है, मेरी राय है कि प्लीज उसी समय आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लें, तो आप देखेंगे, अभी तुरंत की बात तो मैं नहीं कहता लेकिन 6 महीने के अंदर आपका दिमाग कितना मजबूत हो जाएगा, और इसी माध्यम से आप प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कर सकेंगे, और तैयारी करनी ही है क्योंकि मैं बार बार हिदायत देता हूं कि प्री की अलग से कोई तैयारी नहीं होती है, उसके साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी की जानी चाहिए। दोस्तों इसी तरह से एक छोटी सी खबर है, जैसे लीजिए कि असम में आपको देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय दिन से रोजाना खबर आ रही है, फ्लड आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, राइट। अब एक सिंपल सी खबर है, आप सुन लेते हैं और आप इसको छोड़ देते हैं, अलग से कोई शायद प्रश्न भी न पूछा जाए, मैं मानता हूं, लेकिन क्या सच में केवल इतनी ही बात है? क्या हम असम को लेकर के, असम की इस खबर को लेकर के कि वहां बाढ़ आई हुई है, अपनी तैयारी को कुछ और रूप दे सकते हैं? दोस्तों दे सकते हैं, और वो कैसे दे सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा है। बाढ़ आने का कारण क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ जाना, पानी का ज्यादा होना। अब आपको एक नदी मिल गई ब्रह्मपुत्र, यार ब्रह्मपुत्र पर पढ़ा जाए कि ये ब्रह्मपुत्र है क्या। आपको मालूम होना चाहिए कि 2015 में जो क्वेश्चन आया है उसमें गोदावरी नदी के ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा है, 4 ट्रिब्यूटरीज दी हुई है, उसमें दिया हुआ कि शायद गोदावरी नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, और गोदावरी नदी कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, गोदावरी तो साउथ की गंगा कही जाती है, और अभी गोदावरी नदी पर के किनारे नासिक में वो चल रहा है, आपका कुंभ चल रहा है, तो बट नेचुरल पूछा जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे आप सोच सकते हैं यार कितनों की ट्रिब्यूटरी हम याद करें, इतनी सारी नदियां और उनकी इतनी इतनी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो हम किन किन की सहायक नदियों को याद करें, लेकिन जो पूछते हैं ना उसके पीछे एक रीजन होता है, जैसे मैंने अभी गोदावरी नदी के बारे में बताया। लेकिन ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो हर साल बाढ़ क्रिएट करती है असम में, तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि यार ये है क्या, इसके बारे में हम अच्छे से जानें। एक तो जब आप इसका लेसन उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे पूरा का पूरा जो गंगा का मैदान का क्षेत्र है, जब आप पूरे के पूरे इंडिया को ज्योग्राफिकली यानी कि फिजिकली जब डिवाइड करते हैं तो उसके मालूम है कि आपको पहला डिवीजन होता है हिमालय, और हिमालय के पास जो सेकंड डिवीजन होता है वो गंगा का मैदान होता है। तो गंगा का मैदान बना किससे है? 3 नदियों से मिलकर के बना है, मेन 3 नदियां हैं, एक इंडस है जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं, दूसरा जो है वो गंगा है, और तीसरी ब्रह्मपुत्र है। अब आप देखें कि आपकी नॉलेज ब्रह्मपुत्र को आपने पकड़ा है, और ब्रह्मपुत्र को पकड़ने के बाद कितनी सारी चीजें आप और पकड़ते चले जा रहे हैं। तो जब आप फिर ब्रह्मपुत्र पर आएंगे तो अब ब्रह्मपुत्र को देखिए कि ये निकली कहां से है, इस पर भी प्रश्न आ जाते हैं। तो आपको पता लगेगा कि नहीं, ये तिब्बत से निकली है, मानसरोवर के आसपास से कहीं निकली है। अब आप नक्शे पर जाइए। मैं आपको तैयारी करने का एक बड़ा साइंटिफिक और बहुत ही परमानेंट किस्म का तरीका बता रहा हूं दोस्तों। मेहनत वाली बात तो है और हो सकता है कि आपको ये मेरी बात थोड़ी सी ज्यादा ही नीरस लग रही हो, लेकिन प्लीज इसे सरस बनाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप जरा सा भी चीजों को समझने लगेंगे तो चीजें सरस हो जाएंगी। मुझे चूंकि समझ में नहीं आती इसीलिए क्लासिकल म्यूजिक नीरस लगती है, जिस दिन समझ में आने लगेगी सरस लगने लगेगी। तो वो तिब्बत से निकलती है, वहां ग्लेशियर का नाम भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि आंगसी ग्लेशियर का नाम है। तिब्बत से निकलने के बाद वो भारत में एंटर करती है, और भारत में एंटर करती है हमारे अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से एंटर करने के बाद इसके बाद फिर वो असम में आती है, और असम में जब तक पहुंचती है तो और नदियां उसमें मिल जाती है, तो ढेर सारी मिट्टी और ये सब अपने साथ बहा बहा करके लाती है। अब होता यह कि जब नदी अपने साथ मिट्टी बहा करके लाती है तो धीरे धीरे उस वो मिट्टी उस नदी में कहीं ना कहीं जम भी जाती है, और धीरे धीरे उसका तल, उसके बगल के जो तट हैं वो ऊंचे उठते चले जा रहे हैं, और जिसके कारण जरा सा भी उसमें पानी आता है वो पानी चूंकि तट ऊपर उठ गए हैं तो उन तटों को तोड़ करके, तटों से को पार करके कह लीजिए, वो मैदानी क्षेत्र में फैल जाता है। अब आप देखिए कि फिर ये असम में आती है, और असम के बाद फिर ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बांग्लादेश में इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान रखिएगा मित्रों, इसी नदी को कहा जाता है जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम जमुना हो जाता है, और इसके बाद फिर वहां से होती हुई ये बेआब बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे एक प्रश्न पूछ दिया गया प्रिय में कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, अब आपको लगेगा कि लीजिए अब हम इसका मतलब है कि क्या हम सारी नदियों के रास्ते देखें कि किन किन राज्यों से गुजरती है, लेकिन इसमें राज्य है ही क्या। अब इसको आप भूलेंगे कभी, मैप में थोड़ा सा लोकेट कर लीजिए कि ये तिब्बत से निकली, तिब्बत से निकलने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश पहुंची, अरुणाचल प्रदेश के बगल में आपका देखिए असम है, असम पहुंच गया, और असम में पहुंचने के बाद फिर ये डाइवर्ट होकर के बांग्लादेश होते हुए, और फिर और आपको मालूम है कि असम के बगल में बांग्लादेश है, लेकिन ये होगा तब जब आप इसको नक्शे में लोकेट करेंगे, और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर गई, तब आपको लगेगा जब इस पर क्वेश्चन आएगा तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही मजेदार प्रश्न है, बड़े आराम से आप हल कर लेंगे। मित्रों, जिसको मैं कहता हूं कि सब्जेक्ट पर कमांड बनानी चाहिए वो इसी तरीके से बनती है, और आज मैंने खासकर ये दो न्यूज का आधार लेकर के आप लोगों को एक पढ़ाई करने का तरीका बताया है। मित्रों, मेरे पास बहुत पहले एक मेल आया था, और मेल कुछ इस तरीके का था कि सर आप कहते हैं कि कम पढ़ो लेकिन उसे अच्छे तरीके से पढ़ो, तो ये कुछ हमारी बात समझ में नहीं आती कि कम पढ़ने से कैसे सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों, ऐसे सिलेक्शन हो सकता है, कम पढ़िए लेकिन उसके बारे में पूरी तरीके से पढ़िए। ये मतलब मेरा अपना ओपिनियन है, दूसरे सबके अपने अपने ओपिनियन है। मित्रों, अब मैं आता हूं अगले न्यूज पर। दो तीन और छोटी छोटी खबरें थी कि तो वन रैंक वन पेंशन, मित्रों इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में नॉलेज सेंटर में आज आपको क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड किए गए हैं कि वन रैंक वन पेंशन क्या है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम सर्विस में एंटर करते हैं तो एक ही रैंक पर, लेवल पर, है ना, रैंक मतलब लेवल, जैसे कोई मान लीजिए कि हवलदार हो गया या कोई कमांडेंट हो गया, तो वो उस पर एक ही साल नहीं रहता है ना, पता लगा कि वो 10 साल अपने 8 साल 5 साल 7 साल वो एक ही लेवल पर काम कर रहा है, सैलरी में उसकी वो थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, डीए जिसको हम डियरनेस अलाउंस करते हैं वो बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो कर्नल बना, इसको इस तरह से कर्नल बना, और कर्नल बनने के बाद उसने एक साल के बाद उसकी नौकरी पूरी हो गई तो उसको एक ही डीए मिला है तो उसकी सैलरी कम होगी, और एक दूसरा कर्नल है जो कर्नल बनकर के वो भी रिटायर हो रहा है, ये एक साल के कर्नल की नौकरी के बाद रिटायर हो रहा है, और दूसरा एक अधिकारी है जो 5 साल की कर्नल की नौकरी के बाद रिटायर हो रहा है तो उसकी सैलरी ज्यादा होगी। तो पेंशन जो पहले निर्धारित होता था वो ये इस रूप में होता था कि जो आपकी लास्ट सैलरी है उसका एक फिक्स परसेंटेज दे दिया जाता था। अब उन्होंने कहा है कि नहीं, जो पेंशन जो एक अगर रैंक के आधार पर दिया जाएगा कि जैसे कर्नल है तो उन सबकी एक जैसी पेंशन होगी, लेफ्टिनेंट कर्नल है तो उनकी एक जैसी पेंशन होगी, तो इस तरह से वन रैंक वन पेंशन की बात कही गई है। तो आप उस पर आर्टिकल से देख लीजिएगा, जानकारी होनी चाहिए, और आर्मी के लिए इसलिए भी ये थोड़ा सा इस तरह की मांग उनकी बहुत जायज ठहरती है दोस्तों, क्योंकि जो आर्मी में जो एंटर करते हैं वो 32 से 35 साल की उम्र में लगभग लगभग रिटायर हो जाते हैं, और जो बहुत अफसर बन जाते हैं फिर उनकी 20 साल की नौकरी में वो रिटायर होते हैं, तो लगभग लगभग समझ लीजिए कि 40 42 45 साल की उम्र तक रिटायर हो जाते हैं। अब रिटायर होकर के क्या करें, तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और बड़ी कठिन परिस्थितियों में वो नौकरी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी ये मांग काफी कुछ लोग जायज भी मानते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। एक मित्रों एक छोटी सी खबर थी कि बदरपुर से फरीदाबाद की जो 9 किलोमीटर की जो मेट्रो लाइन है उसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उसमें न्यूज कुछ खास ऐसी नहीं है, लेकिन दो एक बात उसमें इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो 2 मेगावाट के सौर ऊर्जा पैनल्स लगाए गए हैं, मतलब सौर ऊर्जा पैनल्स लगाए गए हैं सभी स्टेशनों पर उसके जो भी हैं, और उससे 2 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित होगी। तो जो चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, तो एक उदाहरण है कि किस तरीके से मेट्रो में उसकी शुरुआत कर दी गई है। और एक छोटी सी खबर थी दोस्तों, जो जी सेट 6 जो छोड़ा गया था वो अपनी कक्षा में स्थापित हो गया है और 9 साल तक वो वहां काम करता रहेगा। मित्रों ये कुछ खबरें थी न्यूज को लेकर के, न्यूज़पेपर्स की चर्चा मैंने आपको की है। इसमें देखिए जो खासकर मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक सबसे बड़ी शरणार्थियों वाली समस्या जो है ना वो अभी पैदा हुई है यूरोप के सामने। इधर आप देख रहे हैं कि सीरिया, इधर इराक और फिर इधर अफगानिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं उसके कारण बहुत से लोग छोड़ छोड़ करके और यूरोप की तरफ जा रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो इसको लेकर के मित्रों एक अच्छा आर्टिकल आपको आज नॉलेज सेंटर में अवेलेबल है, प्लीज उसे आप पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और नक्शे के साथ पढ़िएगा। और इसको लेकर के जो एक पहले एक समझौता हुआ था, जो शेन मैन जेन जो समझौता था उसकी चर्चा मैं इससे पहले कर चुका हूं, तो मित्रों उसके बारे में अब नॉलेज सेंटर के बारे में मैं अब आपसे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अब मैं बिल्कुल अंतिम चरण पर आता हूं और जो चरण है ईमेल का, दोस्तों बहुत से मेल आए हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर टीचर्स डे से रिलेटेड बहुत से मेल थे, तो आप सबको मैं बहुत पहले ही आज की शुरुआत में शुक्रिया अदा कर चुका हूं। कुछ लोगों के नाम मैं ले रहा हूं जो और दूसरे इश्यूज से भी संबंधित थे, उसमें है रविकांत, नवीन दुबे दिल्ली से, अभिनव शशांक मिश्र पटना से, गौरव धीमान चंडीगढ़ से, शौर्य ग्रेटर नोएडा से, गौरव साहू झांसी से, इमाम अली बरेली से, रितेश देव वरुण पांडे इलाहाबाद से, राम सोनी भिंड से, अनिमा गौतम रीवा से, विनय कुमार पांडे इलाहाबाद से, बिनती अग्रवाल उत्कर्ष दीप पटना से, राकेश कुमार गुप्ता, प्रभाकर श्रीवास्तव झांसी से, अमरजीत सिंह गंगानगर से, बिमला रचना बिंदल आगरा से और रितु अग्रवाल नागपुर कोरिया छत्तीसगढ़ से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों इसी के साथ ही आज हम अपने इस ऑडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।